تکفیری آتنکواد۔
प्रिय श्रोताओं, तकफीरी आतंकवाद की एक अन्य खड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहरदारी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आधुनिक सलफीवाद के वजूद में आने और इसके विस्तार पर हम चर्चा करेंगे। पिछले कुछ कार्यक्रमों में सलफियों के विचारों की समीक्षा की गई, साथ ही शुद्ध इस्लामी शिक्षाओं से उसके विरोधाभास पर भी नज़र डालते हुए हम पुराने सलफीवाद और मौजूदा सलफीवाद के बीच वैचारिक अंतर तक पहुँचे। हालांकि विगत की शताब्दियों में सलफीवाद के सिद्धांत व आधार स्थिर रहे, लेकिन समय और स्थान की विशेषताओं से इसकी विषय वस्तु में बदलाव आया, इसलिए ये नहीं कह सकते कि मौजूदा सलफीवाद पारंपरिक सलफीवाद जैसा ही है।
मौजूदा सलफीवाद के अर्थ में चरमपंथी विचारधारा वाला वो बड़ा वर्ग आता है जिसमें सब के सब धर्मशास्त्र, आस्था और राजनीति तथा सामाजिक उत्पत्ति की दृष्टि से एक जैसे नहीं हैं। मौजूदा दौर के सलफीवाद में आस्था की नज़र से विगत के युगों से अधिक विविधता है। सलफीवाद के इतने अर्थ निकाले गए हैं कि इस शब्द में विभिन्न विचारधाराएं शामिल हैं और इसका दायरा बहुत बड़ा हो गया है। इसलिए आज सलफीवाद अकेले कोई विशेष अर्थ नहीं देता, बल्कि संयुक्त शब्द से मिलकर वास्तविक अर्थ देता है, जैसे तकफरी सलफीवाद, प्राचारिक सलफीवाद, जिहादी सलफीवाद और राजनीतिक सलफीवाद उल्लेखनीय हैं। विभिन्न विचारधाराओं पर सलफीवाद के फिट बैठने के कारण कभी ऐसी विचारधाराओं को सलफीवाद से जोड़ा जाता है जो विषय वस्तु की नज़र से आम सलफीवाद की श्रेणी में आती है, न कि गतिविधियों की शैली की दृष्टि से। इन गुटों को सलफी कहने का कारण इस्लामी जगत के पश्चिम से प्रभावित बुद्धिजीवियों के मुकाबले में इस्लामी मूल्यों के बारे में उनका दृष्टिकोण या इस्लामी जगत पर पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव को पहले से रोकने की उनकी कोशिश है। मौजूदा परिस्थिति मौजूदा सलफीवाद पर दो तरफा रूप से प्रभावी रही है। सलफीवाद का एक गुट वो है जिसने आधुनिकतावाद और आधुनिक प्रौद्योगिकी से प्रभावित होकर नई परिस्थिति को स्वीकार कर लिया है और वे अपने पारंपरिक विचारों से पीछे हट गया है। इस गुट ने विकास को आदर्श बनाते हुए आधुनिकतावाद को स्वीकार किया है, जबकि चरमपंथी गुट प्रौद्योगिकी, प्रगति और मानव जीवन की शैली में बदलाव पर प्रतिक्रिया स्वरूप अभी भी अपने पारंपरिक दृष्टिकोण को बचाए हुए हैं और मौजूदा दौर की परिस्थिति से सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से टकरा रहे हैं।
सलफियों के बीच एक महत्वपूर्ण बहस समाज में महिला के स्थान और उसकी भूमिका का विषय है। इस संदर्भ में सलफियों के बीच विचारों में अति पाई जाती है। मिसाल के तौर पर सऊदी अरब की सरकार, जो वहाबी सलफीवाद की सबसे बड़ी प्रतिनिधि समझी जाती है, महिलाओं के संबंध में पश्चिम के दृष्टिकोण को स्वीकार करती है। इस अर्थ में कि सिर्फ पवित्र मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी में महिलाओं के लिए हिजाब को जरूरी मानती है, लेकिन जद्दा शहर में महिलाओं के हिजाब के विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता, या सऊदी अरब के सरकारी टेलीविजन के कार्यक्रमों में महिलाएं बेहिजाबी के साथ बहुत नजर आती हैं। ये ऐसी हालत में है कि सऊदी अरब में महिलाओं को गाड़ी चलाने की अनुमति नहीं है। कुल मिलाकर सऊदी अरब में वहाबियों के क्षेत्र में महिलाओं को दूसरे दर्जे का इंसान समझा जाता है और समाज में महिलाओं के स्थान की परिभाषा पैगम्बर इस्लाम द्वारा लाए गए इस्लाम की शिक्षाओं से बहुत भिन्न है। मौजूदा दौर में सलफीवाद के राजनीतिक दृष्टि से ज्यादा सक्रिय होने के कुछ अहम कारण हैं। इनमें सबसे अहम कारण ईरान में इस्लामी क्रांति की सफलता भी है।
ईरान की इस्लामी क्रांति को इस्लामी जगत में इस्लामी जागरूकता की प्रक्रिया में निर्णायक मोड़ समझा जाता है। इस्लामी क्रांति पहली धार्मिक क्रांति थी जिससे शताब्दियों बाद इस्लामी सरकार का गठन हुआ और इसका नेतृत्व धार्मिक हस्ती के हाथ में आया। ईरान की इस्लामी क्रांति का इस्लामी आंदोलनों पर सीधा प्रभाव पड़ा और इसने इस्लामी क्रांति की संस्कृति मुसलमानों में फैलाई। सलफीवाद ने, जो इस्लामी देशों में इस्लामी क्रांति के प्रभाव के फैलने से बहुत भयभीत था, इस्लामी देशों पर इस्लामी क्रांति के प्रभाव को सीमित करने की बहुत कोशिश की। सलफीवाद ने ईरान की इस्लामी क्रांति को इस्लामी क्रांति के बजाय एक रेडिकल शिया क्रांति के रूप में पहचानवाने की कोशिश की। सलफीवाद की नज़र में ईरान की इस्लामी क्रांति ऐसी क्रांति है जो पूरी दुनिया में शिया धर्म को फैलाना चाहती है और सुन्नी संप्रदाय की दुश्मन है। इस प्रकार के प्रचार का लक्ष्य सुन्नी संप्रदाय को इस्लामी क्रांति के खिलाफ उकसाना और उसे इस्लामी क्रांति के दुश्मन के तौर पर खड़ा करना था। यही कारण है कि बहुत से सलफीवादी गुट इस्लामी क्रांति के बाद वजूद में आए। इन गुटों ने दूसरे देशों में इस्लामी क्रांति के प्रभाव को रोकना अपना लक्ष्य बनाया और इसी बहाने वे अन्य इस्लामी देशों में शियों से सीधे तौर पर टकराए।
सलफीवाद के सक्रिय होने का एक और कारण ये था कि अमेरिका ने इसे 80 के दशक के शुरू के वर्षों में अफगानिस्तान के पूर्व सोवियत संघ द्वारा अधिग्रहण के समय पूर्व सोवियत संघ से निपटने के लिए एक हथकंडे के तौर पर प्रयोग किया था। पश्चिम अफगानिस्तान के अधिग्रहण को भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य पूर्व में कम्युनिज्म के विस्तार के तौर पर देखता था। इस बीच अमेरिका अपने सामने दो खतरे देख रहा था, एक इस्लामी क्रांति की सफलता थी जिसने मध्य पूर्व में अमेरिका की शक्ति व प्रभाव के लिए चुनौती खड़ी कर दी थी, तो दूसरी चीज अमेरिका के साथ पूर्व सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति थी जिसने दक्षिण एशिया में शक्ति के संतुलन को बदल दिया था। पूर्व सोवियत संघ की विस्तारवादी नीति के कारण अफगानिस्तान का अधिग्रहण हुआ था। इस बीच मध्य पूर्व में पारिवारिक शासन इस्लामी क्रांति के बाद अपनी स्थिति को अपनी जनता के निकट खतरे में देख रहा था। ये पारिवारिक शासन मध्य पूर्व में अमेरिका के घटक हैं। इस स्थिति में अफगानिस्तान में नास्तिकतावाद के खिलाफ जिहाद शीर्षक के तहत पूर्व सोवियत संघ के खिलाफ संघर्ष अरब देशों में चर्चा का विषय बना हुआ था। हालांकि अरब देशों में वास्तविक अत्याचार उन सरकारों के कारण है जिन पर विशेष परिवारों का लंबे वर्षों से कब्जा है। इन अरब देशों से हजारों की संख्या में अरब जवानों को पाकिस्तान में कैंपों में भेजा गया। अकेले सऊदी अरब से 12,000 से ज्यादा जवान जो शासन विरोधी थे पाकिस्तान में ट्रेनिंग कैंप पहुंचे, जिन्होंने अरब अफगान नामक प्रक्रिया को वजूद दिया। ये वे लोग थे जिन्हें लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहने के कारण दो राष्ट्रीयता वाला कहा जाने लगा। इस काम से सऊदी अरब, ट्यूनिशिया और लीबिया की सरकारों ने,
दूसरी ओर अमरीका ने जो क्षेत्र में पूर्व सोवियत संघ की गतिविधियों से बहुत चिंतित था, इस बल से सबसे ज्यादा फायदा उठाया। उसने ISI के जरिए इन लड़ाकों को आधुनिक हथियार पहुंचाए ताकि वे अमेरिका के बजाय साम्यवादियों से लड़ें। यही कारण था कि ये लड़ाका गुट वित्तीय व हथियारों की नज़र से बहुत शक्तिशाली थे। अफगानिस्तान का अधिग्रहण खत्म होने और पूर्व सोवियत संघ की लाल सेना के बाहर निकलने के साथ ही अफगानिस्तान में नास्तिकों से लड़ने का विषय भी खत्म हो गया, किंतु एक और मुश्किल अस्तित्व में आई। दूसरे शब्दों में, नास्तिकों के खिलाफ सलफीवाद अपने रास्ते से हट गया और पूरे इस्लामी जगत में अनेक चरमपंथी गुटों के वजूद में आने का कारण बना, जो दुश्मन से लड़ने के बजाय सांप्रदायिकता के भंवर में फंसा और मुसलमानों की हत्या करने लगा। पाकिस्तान में अलकायदा और चरमपंथी प्रक्रियाओं के जड़ पकड़ने का राज इसी में निहित है। इसके बाद से अलकायदा के रूप में चरमपंथी सलफीवाद के प्रचार में वहाबियत ने और गंभीर रोल निभाया। सलफीवाद की सबसे स्पष्ट मिसाल वहाबी संप्रदाय है। इस प्रकार का सलफीवाद मजबूत वित्तीय स्रोत है और मस्जिद हराम व मस्जिद नबी पर कब्जा करने के कारण हज और उमरे जैसे स्वर्णिम अवसर को आज दुनिया में तकफीरियत व चरमपंथी सलफीवाद के विस्तार के लिए इस्तेमाल करता है और इस काम में उसे आले सऊद और अमेरिका का समर्थन हासिल है।
पूर्व सोवियत संघ की पराजय के बाद अमेरिका को बजाय निशाना बनाने के इस्लामी जगत और शियों के खिलाफ सबसे ज्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं। वहाबी सलफीवाद, शिया क्रेसेंट या शिया मध्य पूर्व जैसी बातों सहित विभिन्न हथकंडों से निगाहों को फर्जी दुश्मन की ओर मोड़ना चाहता है और शिया तथा विभिन्न इस्लामी संप्रदायों को एक दूसरे से निकट करने वाले बुद्धिजीवियों को इस्लामी जगत के लिए सबसे बड़ा खतरा दर्शाना चाहता है। वहाबी सलफीवाद शिया फोबिया के जरिए अपने बिखर चुके कैंपों को फिर से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस्लामी जगत में जहां जहां अशांति या षड्यंत्र दिखाई दे रहा है, वहां वहाबी सलफीवाद का असर अच्छी तरह देखा जा सकता है। श्रोताओं, इस चर्चा को अगले कार्यक्रम में जारी रखेंगे, सुनना न भूलिएगा।